नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी विपुल के साथ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पल्लवी पुंडीर जी की लिखी हुई कहानी दूध की बोतल। ये कहानी हम पल्लवी पुंडीर जी से अनुमति लेने के बाद सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें हमारा कहानी सुनाना पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं दूध की बोतल। चलो एक बार फिर शहर को सुबह करते हैं, ईद को राम राम और होली पर नमाज पढ़ते हैं, हिंदी में मुस्कुराते हैं और उर्दू में फरियाद करते हैं। मनुष्य रूप में जन्मे हैं तो वही बन जीते हैं। चलो एक बार फिर सुबह को सहर करते हैं। उसके कानों तक गीत के ये बोल पहुंच रहे थे, अथवा नहीं, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। शवों के पहाड़ के नीचे उसका निस्तब्ध शरीर दबा हुआ था। कुछ देर पहले तक वह जीवित रहने के लिए प्रयासरत था, परंतु अब उसका मृतपारी शरीर मृत्यु से मिलने को व्याकुल था। एक नोचा हुआ शहर उसके बराबर लेटा हुआ करा रहा था। एक रुकी हुई रुलाई कंठों तक आकर ग्रीवा का दम घोट रही थी। एक गुलाबी शहर अपनी अस्मिता खोकर बदरंग हो गया था। वो लड़का चंद पलों में इस धर्म रूपी अफीम की व्यसनी दुनिया को अलविदा कह देगा। उस लड़के का नाम क्या था? महान लेखक शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। परंतु वे यदि आज होते तो उनकी भी यह सोच बदल जाती। उन्हें पता चलता कि नाम एक मनुष्य को हिंदू अथवा मुसलमान बनाता है। इसलिए मान लेते हैं कि उस लड़के का नाम मुन्ना था। कितनी सुख की बात है, आज की इस दुनिया में भी कुछ नाम ऐसे हैं जो धर्म की बंदिशों से बाहर हैं, जैसे मुन्ना, मुन्नी, बाबू इत्यादि। इनसे धर्म की बू नहीं आती। सुबह तक मुन्ना का जीवन भी हम सब की ही तरह सामान्य था। स्वयं को और अपने परिवार को जीवित रखने की उसकी जंग प्रतिदिन सुबह आरंभ हो जाती थी। वह सुबह भी भिन्न नहीं थी। मुन्ने बस कर, अब साफ हो गई है बोतल, चल दे मुझे, मुन्ने की माँ की आवाज़ में खिन्नता थी। नहीं माँ, टीचर दीदी कह रही थी कि छोटे बच्चों की दूध की बोतल को उबालना ज़रूरी है। मुन्ना अपनी माँ की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जिसकी हांडी खाली हो उसके लिए यह सब चोचले करना मूर्खता है। वैसे भी गरीबों के बच्चे कीटाणु से नहीं मरते, भूख से मरते हैं। यह कहते हुए माँ ने लड़के के हाथ से बोतल छीनने का उपक्रम किया। मुन्ना छिटक कर भाग खड़ा हुआ था। नहीं नहीं माँ, अपने बेटे की मूर्खता पर जैसे उसे प्यार भी आ रहा था और करुणा भी। चल ला दे, तेरी मुन्नी की बोतल उबाल देती हूँ। शहर की एक छोटी गंदी बस्ती जहाँ सूरज भी अपनी किरणें बिखेरने में पश्चाताप करता था, वहीं रहता था मुन्ना अपनी माँ और 7 महीने छोटी बहन के साथ। उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। 10 वर्षीय मुन्ना एक साइकिल रिपेयर की दुकान पर मुलाजिम था। पिता का साया बहुत पहले ही उठ गया था। नहीं नहीं, मरा नहीं था, बस अगली गली में एक नया परिवार बसा लिया था। परंतु इस बात का दुख ना तो मुन्ना को था और ना ही उसकी माँ को। प्रतिदिन के कला कलेश और मारपीट से उन्हें मुक्ति जो मिल गई थी। मुन्ना अब स्वयं के लिए नहीं अपनी बहन के लिए सपने देखता था। खुद की पढ़ाई तो उसे छोड़नी पड़ी थी, परंतु वह चाहता था कि उसकी बहन खूब पढ़े। अपनी बहन की हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुन्नी को दूध पीना बहुत पसंद था। माँ का दूध तो बच्ची को कभी नसीब ही नहीं हुआ, परंतु गाय का दूध भी रोज़ दे पाना उस गरीब परिवार के लिए नामुमकिन ही था। परंतु मुन्ना येन केन प्रकारेण अपनी बहन के लिए दूध ले ही आता था। पिछले महीने वह अपनी कमाई से मुन्नी के लिए दूध की बोतल लाया था। माँ की गालियाँ खाकर भी प्रसन्नचित्त था, क्योंकि दूध पीते समय मुन्नी के गोलगप्पे जैसे गाल उसे बहुत अच्छे लगते थे। मुन्नी बोतल से दूध आराम से पी लेती थी, उसके बाद अपनी बोतल को खिलौना बना घंटों उससे खेलती रहती थी। ऐसा नहीं था कि मुन्ने को दूध पसंद नहीं था, जब वह छोटा था तो अपनी बहन से भी ज़्यादा दूध पी लेता था, किंतु घर में दो लोगों के पीने लायक दूध नहीं आ सकता था, इसलिए अब वो पाउडर वाली चाय पीता था। वह बहुत परिश्रम करता है, फलस्वरूप दूध की बोतल में दूध अवश्य रहता है। मुन्नी के पास बैठा अक्सर भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाता था। उस दिन भी यही हुआ था। मुन्ना मुन्ना, काम पे जाना है या नहीं? बैठे बैठे ही मुन्नी डॉक्टर बन जाएगी क्या? माँ की आवाज ने उसे वर्तमान में ला दिया था। एक छलांग मारकर उसके सामने खड़ा हो गया। जा ही रहा था, एक शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी उसके होठों पर। हाँ जी, मैं ही बेकार बोल रही थी, दोपहर तक तो आ जाएगा ना? पता नहीं, आने का तो जाने के बाद पता चलेगा। मुन्ना दौड़ पड़ा था। अरे अरे, संभाल कर बेटा, माँ का दिल तो बेटे को इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त करना चाहता था, परंतु महामारी सी मारक गरीबी प्रेम की औषधि से कहाँ ठीक होती है, उसे तो रुपए की मदिरा पिलानी पड़ती है। नियति ने जिंदगी के शतरंज पर अपनी बाजी चल दी थी, परंतु मुन्ना इससे बेखबर नियत समय पर दुकान पहुंच गया। वह अभी दुकान पर पहुंचा ही था कि चारों तरफ से शोर सुनाई देने लगा। यह सब कुछ उसके लिए नवीन और अप्रत्याशित था। खालिद चाचा, यह सब क्या हो रहा है? जल्दी दुकान बंद करके चला जा, दंगा हो गया है, उनके चेहरे पर बेचैनी थी, परंतु मुन्ना अभी भी असमंजस में था। चाचा, ये दंगा क्या होता है? इस मासूम प्रश्न के उत्तर में खालिद ने उसे अपने बाहों के अंदर ऐसे कैद कर लिया जैसे वह मुन्ना को इस प्रश्न के उत्तर से बचाना चाहता, परंतु जवाब तो देना ही था।
इंसान जब खुदा के नाम पर हैवान बन जाता है तब वह दंगा करता है।
दुकान जल्दी से बंद करके वे लोग अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। दुकान में मुन्ना के साथ उसके मोहल्ले का रफीक भी काम करता था, इसीलिए दोनों साथ ही निकले थे। रफीक मुन्ना से उम्र में 5 साल बड़ा था, शायद इसीलिए उसे इस बात का मूर्ख गुमान था कि वह इस स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। पिछले महीने गाय और इस बार सुअर, रफीक की आवाज़ की गंभीरता को मुन्ना का समर्थन मिला। बात तो गलत है, गाय तो दूध देती है, उसे क्यों मारा? सुअर तो फिर भी, किंतु उसकी बात अधूरी ही रह गई थी। गधा है तू, बच्चा का बच्चा ही रह गया। भैया, मैं या तो बच्चा हो सकता हूँ अथवा गधा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता हूँ? इंसान जब तक बच्चा होता है वह गधा ही होता है। हाँ भैया, सही कहते हो, तभी तो बचपन में वह दंगा नहीं करता, मुन्ना ने भोलेपन से कहा। और क्या, धर्म और जाति जैसी गंभीर बातों को समझ पाने की बुद्धि कहाँ होती है बचपन में? तभी तो मैं कहता हूँ, बड़ों की तरह सोच। मुन्ना ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उसका बाल मन यह समझ नहीं पा रहा था कि बड़े अधिक समझदार होते हैं अथवा बच्चे। जब तक वह घर के पास पहुंचा, वह एक निर्णय ले चुका था।
चल मुन्ना, तेरा घर आ गया, अगर शांति हो गई तो कल दुकान खोलेंगे,
यह कहकर रफीक अपने घर की तरफ मुड़ गया था। उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होकर कुछ औरतों से बात कर रही थी। मुन्ना पर नज़र पड़ते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया था।
मेरा बच्चा, शहर के हालात देखकर तो मैं डर गई थी, चल चल अंदर चल, कुछ खा ले।
बड़े लोग मूर्ख होते हैं, खाना खाते खाते अचानक मुन्ना बोल पड़ा था। क्यों भला? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा था।
गाय और सुअर के लिए लड़ते हैं, मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते हैं, यह सब मिलकर दूध के लिए क्यों नहीं लड़ते?
मतलब?
अरे माँ, यह सब मिलकर सरकार से सब बच्चों के लिए दूध क्यों नहीं मांगते? इतने सारे लोग हैं, मिल जाएं तो सरकार को सभी को दूध देना ही पड़ेगा।
उसके भोलेपन पर माँ को हंसी आ गई थी।
अच्छा, जब तू बड़ा होगा तो दूध मांग लेना। अभी मांग लूं तो? बड़ा होकर कहीं मैं भी मूर्ख बन गया तो? मुन्ना की बात पर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगी थी। अचानक मुन्नी का रोना शुरू हो गया था। माँ उसे गोद में लेकर खिचड़ी खिलाने का असफल प्रयास करने लगी। काफी प्रयासों के बाद भी वह कुछ नहीं खा रही थी। मुन्ना और माँ दोनों समझ गए थे कि वह दूध के लिए रो रही है। किसी तरह से माँ ने उसे थोड़ा सा खिलाकर सुला दिया था, परंतु शाम में उसका रोना बढ़ गया था। शाम हो गई है, अब तक तो सब ठीक हो गया होगा, मुन्ना मन ही मन सोचता हुआ दूध की बोतल उठाकर बाहर की तरफ चला ही था कि माँ ने रोक दिया था। बोतल उठाकर कहाँ चला? पास ही में जा रहा हूँ, बलराम डेयरी तक। पागल हो गया है तू? कहीं नहीं जा रहा है, मैं सलमा के घर से थोड़ा पाउडर मांग लाती हूँ, पानी में मिलाकर पिला देंगे, माँ ने सख्त स्वर में कहा। अब तक सब ठीक हो गया होगा, तू परेशान मत हो, मैं गया और आया। माँ की बात को अनसुना कर मुन्ना बाहर की तरफ निकल गया था, जहाँ अनहोनी उसके इंतजार में बैठी थी। बाहर हालात सामान्य ही लग रहे थे, हालांकि बाजार में रोज से चहल पहल थोड़ी कम थी। बेटा, बोतल लेकर जल्दी चला जा, हालात सामान्य लग रहे हैं परंतु है नहीं, डेयरी वाले काका के स्वर में चिंता थी। जी बस जा ही रहा हूँ। अभी मुन्ना कुछ ही कदम चला था कि पीछे से कई लोगों के पदचाप सुनाई देने लगे। मुन्ना दोनों तरफ से घिर गया था। होठों पर ईश्वर के नाम भिन्न अवश्य थे, परंतु आंखों में एक दूसरे के प्रति घृणा सामान्य थी। दोनों तरफ की भीड़ में कोई निहत्ता नहीं था। थोड़ी देर में अल्लाह और भगवान के बंदों में ग्रह युद्ध छिड़ गया था। मुन्ना शायद उस रेखा पर खड़ा था जहां से ना अल्लाह और ना भगवान उसे देख पाता। इसीलिए जब उनके बंदों के पैरों से वह रौंदा जा रहा था, कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। उसे एक आदमी ने धक्का दिया था और वह गिर गया था। अनगिनत लोगों के पैरों द्वारा उसका शरीर कुचला गया। गिरते समय भी उसे इस बात की ज़्यादा चिंता खाई जा रही थी कि कहीं बोतल को कुछ नुकसान ना हो जाए, अतः उसने बोतल को अपने पेट के नीचे छुपा लिया था। उसकी पीठ लोगों के बोझ से टूट गई थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। हाँ, परंतु कुछ देर बाद बीएसएफ वाले ज़रूर आए थे, परंतु उन्हें मुन्ना कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह तो शवों के नीचे दबा हुए चल पड़ा था, परंतु शायद अब उसके कान उस भजन के साथ उन फौजियों की आवाज़ भी सुन पा रहे थे। परंतु ऐसे समय में यह भजन गा कौन रहा था? पास के मंदिर से आवाज आ रही थी। मुन्ना का मस्तिष्क किसी उधेड़बुन में लगा हुआ था। आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो इसका मतलब मैं जीवित हूँ, परंतु उसकी आवाज़ जैसे जम गई थी। आंखें खुली थी किंतु शरीर संवेदनशील हो गया था। पीठ को असंख्य लोगों ने रौंदा था, दर्द की अधिकता ने उसे स्तब्ध कर दिया था। तभी शायद किसी की नज़र उसके पैरों की उंगलियों पर चली गई थी। मुन्ना को प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर से कोई भारी वस्तु हटाई हो। अनगिनत लाशों के ढेर को हटाने के बाद उन्हें पेट के बल लेटा हुआ मुन्ना दिख गया था। सर, एक छोटा बच्चा है,
जल्दी चेक कर मीरा, देख बच्चा जिंदा है या नहीं।
कोई बोला तो सिपाही ने उसके कनपट्टी पर हाथ रखकर जांचा। लड़का जिंदा है जनाब,
मीरा बच्चे को सीधा कर। सलीम, एम्बुलेंस को फोन कर दिया।
वो अफसर मुन्ना के पास आ गया था।
जी सर, एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच रही है।
मुन्ना को सीधे करते ही सिपाही की नज़र उससे मिली। उस जवान की छोटी सी चीख निकल गई थी। पेट के नीचे पड़ी बोतल भारी बोझ नहीं झेल पाई और टूट गई थी। उस कमज़ोर बोतल में मुन्ना जैसा साहस नहीं था। बोतल का नुकीला हिस्सा मुन्ना के पेट में घुस गया था। इस खाव से खून का रिसाव लगातार जारी था।
अजीब बात है जनाब, बोतल तो प्लास्टिक की है, फिर इतना गहरा घाव। नीड़ा, बोतल तो प्लास्टिक की ही थी, परंतु टूटी ऐसी कि चाकू का काम कर गई। कुछ ऐसा ही तो यहाँ हो रहा है। जब तक साथ थे इतना प्यार था, जब प्यार टूटा तब भरोसा टूटा, और इस टूटे हुए टुकड़े ने शहर को लहूलुहान कर दिया।
जी जनाब, एम्बुलेंस आ गई जनाब, बच्चे को उठाओ क्विक।
अब तक शांत पड़ा मुन्ना बोतल की बात सुनकर बेचैन हो गया था। दूध की बोतल टूटने की खबर उसकी टूटी सांसों को और तोड़ गई थी। अब तक खामोश पड़े लब बोल पड़े थे,
दू क्या कहना चाह रहे हो बेटा?
बु, बु, बु।
पानी पिलाओ इसे।
अफसर की बाहों में था मुन्ना का सिर। मुन्ना की सांसें तेज चलने लगी थी और फिर पंछी पिंजरा छोड़ उड़ गया था। एक दीर्घ रुच्छावास के बाद अफसर तथा अन्य सिपाही खड़े हो गए थे। अफसर ने अपनी आंखों से छल के आंसू को पोंछा और अनिच्छा से बोले, सोमवीर चेक कर, लड़का हिंदू था या मुसलमान, लिस्ट में नाम डालना होगा। शुक्रिया।
हमारी और कहानियां सुनने के लिए फॉलो करें हमारा पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल सुनो कहानी विपुल के साथ।